हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। जैसे ही धरा ने अपनी आपबीती सुनाई, तारा की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था, और अचानक से तारा परी ने धरा का हाथ पकड़ लिया था। कहीं में कहीं तारा को ये जानना था कि आखिरकार धरा को वश में किसने किया था, और जैसे ही उसने उसकी आंखों में झांकना शुरू किया तो जल्दी ही उसे धरा दिखाई दे गई थी, जो कि अपने पिता को मुखाग्नि देने के बाद घर लौट रही थी। तभी वो किसी से टकराई थी। वो कोई और नहीं बल्कि मल्लिका थी। मल्लिका ने इस वक्त धरा पर अपने हाथ की सबसे छोटी उंगली के नाखून का प्रयोग करते हुए उसके जिस्म में वो नाखून, जो कि सुई के बराबर बारीक हो गया था, वो लगा दिया था और उसे अपने वश में कर लिया था। और उसके बाद उसे वो अमन के बंगले में ले आई थी और सबके सामने उसे अमित की होने वाली बीवी बताया था। अब धरा का सारा सच तारा परी के सामने था, और उसने धरा को समझाते हुए कहा था, तुम्हें मेरी बात ध्यान से सुननी होगी। इस वक्त तुम कुछ जंगली राक्षसों के बीच में फंसी हुई हो। तुम्हें इस तरह का बर्ताव करना होगा, जो भी तुम्हें वो कहेंगे तुम्हें उनकी बात माननी होगी, स्पेशली मल्लिका की। मल्लिका जैसा तुम्हें कहेगी तुम्हें वैसा ही करना होगा। और एक और बात, अब तुम मेरी मदद करोगी काली शक्तियों के मालिक अमित का चेहरा सबके सामने लाने में। तुम्हें अब मैं जैसा कहूँ तुम्हें वैसा ही करना होगा। ऐसा कहकर तारा परी ने जल्दी ही उसे बहुत कुछ समझा दिया था। और तब धरा, जो कि खुद एक आत्मविश्वास से भरी हुई लड़की थी, वो हर सिचुएशन से निपटना अच्छी तरह से जानती थी, तो इसीलिए उसने तारा की बात को मानते हुए कहा था कि आपने आज तक मेरी बहुत ही ज़्यादा मदद की है। इतना ही नहीं, जब मेरा चेहरा पूरी तरह से ख़राब हो चुका था, सिर्फ और सिर्फ आपने ही उसे ठीक किया था, और मेरी फिर इज्जत भी उसे गुंडे से बचाई थी। आपके लिए मैं अपनी जान देने को भी तैयार हूँ। मैं नहीं जानती कि आप कोई नॉर्मल इंसान है, परी है या फिर जिन है या भूत प्रेत आत्मा, आप जो कुछ भी हैं, लेकिन आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। धरा की बात सुनकर तारा मुस्कुरा उठी थी, और साथ ही साथ सोनल परी भी मुस्कुराने लगी थी। और तभी तारा ने धरा को गले से लगा लिया था, और सोनल परी भी उनके गले से जा लगी थी। अब वो तीनों मिलकर एक हो चुकी थी, और उन्होंने प्लान बना लिया था कि अमित को आखिरकार किस तरह से उन्हें एक्सपोज करना ही था। वेल, जल्दी ही धरा को सारी चीज़ समझाने के बाद तारा परी एक बार फिर आकर अपने बेडरूम लेट गई थी। और जैसे ही वो लेटी, अचानक से उसे एहसास हुआ मानो कि उसके कमरे में अमन के अलावा भी कोई और मौजूद हो। तब तारा परी को काफ़ी अजीब सा लगा था, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले वो धरा से मिलने गए थे, तब अमन अकेला वहाँ सो रहा था, लेकिन अब किसी और के होने का एहसास तारा को अंदर ही अंदर थोड़ा सा डरा गया था। उसे लगा कहीं काली शक्तियों का मालिक अमित ही ना हो, क्योंकि भले ही तारा उसका अच्छी तरह से मुकाबला कर सकती थी, लेकिन अभी वो उस पर यह बात जाहिर नहीं होने देना चाहती थी कि वो एक परी थी। तब तारा परी ने अच्छी तरह से उठकर चेक किया था, लेकिन उसे अमन के अलावा कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन तारा परी की स्ट्रांग फीलिंग बार बार इस बात को कह रही थी कि इस कमरे में अमन के अलावा कोई और भी मौजूद है, लेकिन तारा परी उसे नहीं देख पा रही थी। कहीं ना कहीं तारा की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। वहीं काली शक्तियों का मालिक अमित, जो कि अपने कमरे में घोर तप कर रहा था, उसने अपने अंदर का दानव निकालकर सीधा अमन के कमरे में भेज दिया था, जिसका एहसास तारा परी को हो रहा था, लेकिन वो उसे देख नहीं पा रही थी क्योंकि वो एक काले धुएं के रूप में वहां मौजूद था, और वैसे भी सर्दियों का समय था जिसकी वजह से कोहरा होना आम बात थी, तो इसीलिए तारा ने इन सब चीज़ों पर ध्यान ज़्यादा नहीं दिया था। लेकिन बार बार उसकी फीलिंग उसे चीख कर कह रही थी कि कमरे में अमन के अलावा कोई और भी मौजूद है। वहीं वो दानव एक बार फिर अमन के पास आया था, और अमन के पास आकर वो उसके जिस्म को स्पर्श करने लगा था, और तुरंत अमन ने अपनी आंखें खोल ली थी। जैसे ही अमन ने इस तरह से आंखें खोली, तारा की हैरानी को कोई ठिकाना नहीं था, और वो अमन की ओर देखकर कहने लगी थी, क्या हुआ है, आप इतनी जल्दी सोकर क्यों उठ गए, अभी तो आप सोए थे। तभी अमन अचानक से हंसते हुए तारा के करीब आया था, और उसका हाथ पकड़कर उसे उसने अपनी ओर खींच लिया था, और कहने लगा था, जिसकी इतनी खूबसूरत बीवी उसके पास में हो, भला उसका सोने का दिल कैसा करेगा। ऐसा कहकर उसने एक बार फिर तारा को अपनी बाहों के लपेटे में ले लिया था, और तारा अमन के इस तरह का बर्ताव करने पर पूरी तरह से हैरान हो गई थी। वो सोचने लगी थी, अभी कुछ ही देर पहले तो अमन उसके साथ रिश्ता बनाकर सोया था, फिर अचानक से उसके साथ क्या हुआ था। अब तारा की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था, और वो चाहकर भी अब अमन को नहीं रोक पा रही थी, क्योंकि अब अमन काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुका था। जल्दी उसने एक बार फिर उसके कपड़े को उसके जिस्म से अलग करके उसके साथ रिश्ता बनाना शुरू कर दिया था। तारा परी की हैरत बढ़ती ही जा रही थी, और साथ ही साथ इस बात का एहसास कि उसके कमरे में कोई है तारा को काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान किए हुए था। वहीं दूसरी ओर काली शक्तियों का मालिक अमित जोरों से हंसने लगा था, और कहने लगा था, बहुत शौक था ना तुम्हें काली शक्तियों के मालिक अमित पर हाथ उठाने का, अब देखो मैं अपने दानव के द्वारा तुम्हारे अमन को किस तरह से अपने काबू में करता हूँ। अभी अमन का तेज, अमन का दिन महाराज होने की शक्ति और साथ ही साथ तिलिस्मी पत्थर उसे दानव को अमन के जिस्म के अंदर नहीं जाने दे रहा था। लेकिन जैसे वो दानव अमन के जिस्म को छूकर आता था, तब अमन के दिल में किसी न किसी औरत के साथ जिस्मानी रिश्ता बनाने की इच्छा जागृत होने लगती थी और उसके पास में उस वक्त सिर्फ अपनी बीवी तारा ही दिखाई दिया करती थी, तो वो तारा के साथ रिश्ता बना लिया करता था। लेकिन अब काली शक्ति के मालिक अमित को कुछ ऐसा करना था कि जिस वक्त तारा परी उसके कहीं आसपास भी मौजूद ना हो, उसी वक्त वो अपने दानव को जागृत करे और अमन के साथ अमन को टच करवाए, क्योंकि जैसे ही वो अमन को टच करेगा, उसका किसी न किसी औरत के साथ रिश्ता बनाने का मन होगा और वो फिर मलिका के साथ रिश्ता जरूर बनाएगा। कहीं ना कहीं काली शक्ति का मालिक अमित अपने प्लान के साथ पूरी तरह से तैयार था। वहीं तारा का एक बार फिर अमन का शिकार हो चुकी थी और कितनी ही देर तक वो अमन के बारे में सोचती रही थी। अमन हालांकि एक बार फिर उसके साथ रिश्ता बनाने के बाद सो चुका था, लेकिन तारा के दिल में कुछ अजीब सी चुभन थी और साथ ही साथ इस बात का एहसास कि उसके कमरे में कोई है, उसे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सोचने पर मजबूर कर गया था। वहीं दूसरी ओर अगली सुबह जैसे ही धरा उठी, धरा को तारा और सोनन परी के कहने के मुताबिक अब पूरी तरह से अमित के वश में होने की ही एक्टिंग करनी थी, तो इसीलिए उसने ज्यादा कुछ नहीं करना था, उसे केवल चुप ही रहना था, क्योंकि जब से धरा वहां पर आई थी वो केवल चुप ही थी। उसने वहां पर किसी से ज्यादा बातें नहीं की थी, तो इसीलिए जैसे ही धरा उठी, मलिका को इस बात का अंदेशा था कि धरा को जैसे कल रात कुछ याद आ गया था तो अगली सुबह उसे कुछ याद ना आ जाए, तो उसे इसीलिए हर सबसे पहले उसे धरा से मिलना था
और इस बात की तसल्ली करनी थी कि धरा अभी भी उसी के वश में है। तो जैसे ही उसने धरा को सोनल परी के साथ देखा तो जल्दी से मलिका उसके पास गई थी और कहने लगी थी, मैडम वो मुझे, सर ने आपके लिए ज्वेलरी के सेट की पिक्स मंगाए हैं, आप उनमें से कोई भी एक सेट पसंद करके मुझे बता दीजिए, एक्चुअली सर को वो बुक भी करने हैं। जैसे ही मलिका ने ये कहा, धरा ने तुरंत अपनी गर्दन झुका ली थी और अब मलिका मन ही मन में खुश हो गई थी, क्योंकि उसे इस बात का यकीन हो चुका था कि धरा अभी भी उसी के वश में है, तो वो उसने राहत की सांस ली थी। वहीं सोनल परी मन में खुश हो गई थी कि उसने मलिका को इस बात से गलत फहमी दिलवा दी थी कि धरा उसके वश में है। और तभी उसने कुछ रैंडम से सेट वगैरह ज्वेलरी सेट धरा को दिखाए थे, लेकिन धरा ने कुछ भी जवाब नहीं दिया था, उसने केवल सर झुका कर रखा था। और जैसे ही मलिका ने कहा कि क्या ये सेट मंगवा ले, तो उसने तुरंत हाँ कह दिया था। अब तो मलिका को पूरा यकीन हो गया था कि धरा उसी के वश में है, वरना वो उसका पसंद किया हुआ सेट क्यों मंगवाती। और फिर जल्दी ही मलिका मुस्कुराते हुए वहां से चली गई थी और सोनल परी उसे जाते हुए देखकर उसकी बेवकूफी पर खुश हो रही थी। और तभी अचानक सोनल परी की निगाह किसी और पर नहीं बल्कि तारा परी पर पड़ी थी। तारा जो कि अमन के उठने से पहले जल्दी ही उठ गई थी और वो सीधा सोनल परी के पास आई थी और तारा की उदासी सोनम परी से छुपी नहीं रही थी, क्योंकि तारा जब भी उदास होती थी अचानक से उसके आसपास का सारा एनवायरनमेंट सब कुछ सैड सा लगने लगता था। ऐसा लगता था मानो के आसपास किसी भी चीज में जान ही ना हो। तारा हमेशा हंसते खेलते खिलखिलाती हुई अच्छी लगा करती थी। तारा की हालत जब परीलोक में वो राक्षस उसके साथ जिस्मानी रिश्ता बनाया करता था तब ऐसी हुआ करती थी, लेकिन अब यहाँ पृथ्वीलोक पर उसकी ऐसी हालत देखकर कहीं ना कहीं सोनम परी का दिमाग जोरों से चलने लगा था और उसने तारा की ओर देखकर कहा था, मैडम क्या कुछ बात है? क्योंकि धरा उस वक्त वहां मौजूद थी तो वो धरा के सामने सीधे तारा को परी नहीं कह सकती थी। हालांकि धरा को इस बात से कोई मतलब नहीं था कि धरा एक परी है या कौन है, उसे तो बस इतना पता था कि तारा उसकी बहुत बड़ी वाली शुभचिंतक है, क्योंकि हर बार तारा ने ही उसे कितनी ही जगह से बचाया था। तभी तारा ने एक नज़र सोनल परी की ओर देखा और आंखों ही आंखों में मन बात करने का डिसीजन ले लिया था और कहने लगी थी, अमन का बर्ताव आजकल काफ़ी ज़्यादा बदल गया है, उसे सिर्फ और सिर्फ हर वक्त मेरे जिस्म की पड़ी रहती है। इतना ही नहीं, कल रात तो मैंने ऐसा महसूस किया मानो कि मेरे कमरे में कोई और भी है। तभी सोनम परी कुछ सोचने लगी थी और कहने लगी थी, तारा मैं तुमसे एक बात बहुत पहले कहना चाहती थी, लेकिन मुझे लगता है कि वो बात कहने का अब समय आ गया है। वो कल रात में धरा के कमरे से निकल रही थी तब मैंने काली शक्तियों के मालिक अमित के कमरे से कुछ रंग बिरंगी रोशनी निकलते हुए देखी थी। तब मैं समझी कि जरूर कोई ना कोई अपना जादू आजमा रहा होगा या कुछ ना कुछ कर रहा होगा, तो इसीलिए मैंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। लेकिन अब तुम्हारी बात सुनने के बाद कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जरूर इसके पीछे काली शक्तियों के मालिक अमित का हाथ है। मुझे लगता है कि तुम्हें इसकी तह तक जाना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए। जैसे सोनल परी ने तारा परी से सारी बातें की, अब तारा परी का दिमाग भी अब जोरों से चलने लगा था और उसे कहीं ना कहीं इस बात का एहसास होने लगा था कि जब से काली शक्ति का मालिक अमित इस घर में आया था तब से ही अमन इस तरह का बर्ताव कर रहा था।